हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ने उसे हल्का सा देखा, लेकिन इस बार उसे दूर नहीं किया। वो बड़े प्यार से सबके लिए खाना लगाने में लग गई और घर का माहौल धीरे धीरे फिर से हल्का और सुकून भरा हो गया। वो किसी से प्यार से बात तक नहीं करती थी। इनफैक्ट किसी भी कर्मचारी की कॉल डिटेल निकलवा कर देख लो, झलक ने कभी भी किसी से किसी तरह की कोई फालतू या निजी बात नहीं की थी। फिलहाल देर तक हंसी मजाक करते हुए सभी ने खुशी के माहौल में खाना खाया। वहीं आदित्य पूरा समय झलक को देखते हुए बोला, अभी तक तुमने मुझे टास्क नहीं दिया। झलक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर राणा, मेरा टास्क आप पर कर्ज है और जब मैं मांगूंगी आपको उसी वक्त देना होगा, प्रॉमिस कीजिए। अब तो आदित्य के चेहरे पर जैसे लड्डू फूटने लगे। उसने तुरंत उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप जब भी जो कुछ भी करने के लिए कहेंगी मैं पूरा करूंगा। ये कहते हुए आदित्य के गाल अपने आप लाल हो गए। झलक ने उसके लाल होते गाल देख लिए थे और अंदर ही अंदर उसे हंसी भी आ रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका बोली, चलो भाई फटाफट आ जाओ, वैसे भी इन लोगों को हराने के बाद कमाल की भूख लगी है। ये कहते हुए उसने कबीर की तरफ आंख मार दी। कबीर मुंह खोले अनामिका को देखने लगा और मन ही मन बोला, ये लड़की है या आफत, जब देखो मेरी तरफ आंख मार देती है। रोहन ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। फिलहाल खुशी के माहौल में सभी ने भरपेट खाना खाया। झलक के मन में अब किसी तरह की कोई कसक बाकी नहीं थी। वो अब सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट होने वाला था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑर्गेनाइजर ने उसे खुद आमंत्रित किया था। उसके लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि अवार्ड मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने अपनी ऐसी पहचान बना ली थी कि वो उम्मीदवारों की सूची में शामिल थी और यही उसकी असली जीत थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना इस वक्त पूरी तरह खुद को काम में झोंक चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वो झलक के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी जिस तरह उसके मन में झलक को लेकर गलतफहमियां भर दी गई थी, वो यही मान बैठा था कि झलक ने खुद को बेचकर ये सब हासिल किया है। उसे लगता था कि इतने महंगे कपड़े, इतनी शानो शौकत और पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है, जरूर किसी अमीर आदमी का सहारा होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि वो अब इन सब बातों में नहीं पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। वैसे भी वो झलक को तलाक दे चुका था, हालांकि उसका दिल भीतर ही भीतर बगावत कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ खुराना दिल से ज्यादा दिमाग की सुनने वालों में से था। वहीं रणविजय भी अब ये बात समझ चुका था कि झलक के पीछे आदित्य राणा का हाथ है। उसे लगता था कि आदित्य की वजह से ही झलक इस मुकाम तक पहुंची है, वरना उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। सबके मन में यही चल रहा था कि आदित्य ने झलक को अपनी रखेल बनाकर रखा होगा, तभी वो उस पर इतना पैसा लुटा रहा है। अमीरों का यही शौक होता है। यही सोचकर रणविजय ने भी झलक को अपने दिमाग से निकाल दिया था और अब तो उन्होंने केवल झलक को रास्ते से हटाने तक का फैसला कर लिया था। जिस तरह उनकी बेइज्जती हुई थी उसके बाद उन्होंने अपने आदमी भेज दिए थे उसकी जान लेने के लिए। अब उन्हें सिर्फ अपने आदमियों के कॉल का इंतजार था। फिलहाल उधर आकांक्षा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि जिन आदमियों को काम पर भेजा गया था उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। न उनका फोन लग रहा था, न कोई खबर मिल रही थी। नैना हर पल उनसे पूछ रही थी, झलक कहाँ है, किस जगह पर है। जब उन्हें पता चला कि झलक किसी महल जैसे घर में रह रही है, तो पहले तो उन्होंने यही सोचा कि आदित्य राणा ने पैसे के दम पर उसके लिए कोई बड़ा बंगला खरीद दिया होगा। लेकिन जैसे ही आकांक्षा को ये पता चला कि झलक महल जैसे घर में रह रही है, उसके दिल में आग लग गई। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी। उसकी सोच थी कि झलक एक मामूली सी जिंदगी जिए, किसी की मोहताज बनकर रहे, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही उल्टी थी। जब सुपारी लेने वाले लोगों ने बताया कि झलक सच में किसी शाही हवेली जैसे घर में रह रही है, तो आकांक्षा के भीतर जलन की आग और भड़क उठी। वो गुस्से में अपनी माँ पर बरसते हुए बोली, उसे पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। अब देखो आदित्य राणा के साथ रह रही है, क्या पता कल को उससे शादी भी कर ले और उसे अपना नाम दे दे, तब तो वो पूरे समाज के सामने हमें ही गलत साबित कर देगी। उसकी आंखों में जलन, नफरत और डर तीनों एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। अब अगर उसे समय मिल गया तो पता नहीं वो अपने बारे में क्या क्या सोचने लगेगी। हम सब कुछ कितनी मेहनत से परफेक्ट कर सकते हैं, आप समझ रही है ना। झलक को हमेशा नाजायज ही रहना चाहिए, उसे कभी भी किसी तरह का कोई सरनेम नहीं मिलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रही है ना। जैसे ही आकांक्षा गुस्से से दांत भींचते हुए अपनी माँ नैना जी की तरफ देखकर बोली, तो नैना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी मैं उसे खत्म करने के लिए गुंडे भेज चुकी हूँ। अगर उसकी जान चली जाएगी तो हमें उसके बारे में फिर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही आकांक्षा गुस्से में अपना फोन पटकते हुए बोली, अभी तक आपके उन गुंडों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, किसी ने ये तक नहीं बताया कि वो लड़की मरी है या जिंदा। मैं बेसब्री से उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही हूँ, आप जानती है मैं कितनी बेचैन हूँ। इतना कहकर उसने फिर से फोन उठाया और जिन लोगों को सुपारी दी थी उन्हें एक एक करके कॉल मिलाना शुरू कर दिया। उधर भी सारे गुंडे जिन्हें झलक ने और अनामिका ने बुरी तरह पीट दिया था, वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। उनके फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहे थे, इसलिए किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इधर आकांक्षा बेचैनी से टहल रही थी तो नैना ने उसे समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो,
मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग काम जरूर पूरा करेंगे। हमने पूरे 2 करोड़ रुपए दिए हैं उसकी मौत के लिए, और 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। ये कहते हुए नैना के चेहरे पर एक अजीब सी महत्वाकांक्षा झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर रणविजय भी अपने गुंडों को लगातार फोन मिला रहा था, लेकिन किसी ने भी फोन उठाकर ये नहीं बताया कि झलक मरी या जिंदा है। रणविजय गुस्से में बोला, आखिर ये लोग कहाँ मर गए? पूरे 5 करोड़ रुपए दिए हैं उस लड़की को खत्म करने के लिए, और ये लोग फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। अगर 2 दिन के अंदर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं खुद जाकर झलक का गला घोट दूंगा। उसके चेहरे पर खतरनाक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी दादी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा अगर हमें अपने हाथ खून से रंगने होते तो हम गुंडों को सुपारी क्यों देते? हम खानदानी लोग हैं, हमारा नाम किसी मर्डर मिस्ट्री में नहीं आना चाहिए। मीडिया में हमारी सिर्फ पॉजिटिव छवि ही जानी चाहिए, कोई नेगेटिव खबर नहीं, समझ रहे हो ना? दादी की बातें सुनकर रणविजय ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जलन की आग धधक रही थी। उसका बस चलता तो वो खुद जाकर झलक की जान ले लेता। फिलहाल उधर सिद्धार्थ ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। उसने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे जिन्हें वो 3 दिनों के अंदर होने वाले बड़े बिजनेस फंक्शन से पहले सबमिट करना चाहता था। 24 घंटे वो काम में डूबा रहने लगा था, लेकिन बीच बीच में झलक का आदित्य के साथ होना उसकी आंखों के सामने घूम जाता। जिस तरह आदित्य ने सबके सामने झलक को नेकलेस पहनाया था और फिर झलक उसका हाथ थामकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी, ये सारे दृश्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसके तन बदन में जलन सी उठ रही थी।
वहीं रौनित सिद्धार्थ का असिस्टेंट भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे खुद पर अफसोस हो रहा था कि उसने झलक का इस तरह मजाक क्यों उड़ाया। जिस तरह से उसने सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, कहीं मैंने बेवजह झलक से पंगा तो नहीं ले लिया? अगर उसने अपने उस अमीर बॉयफ्रेंड से कहकर मेरी ही सुपारी दे दी तो? नहीं नहीं, मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। अगली बार जब भी झलक मिलेगी, सबसे पहले उससे माफी मांग लूंगा। ये सोचते हुए रौनित के माथे से पसीना टपक रहा था। फिलहाल उधर मल्होत्रा मेंशन से राणा परिवार वापस अपने घर के लिए निकल गया था। जाने से पहले अभय एक बार फिर झलक के पास आया और सिर झुकाकर बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना थप्पड़ वाली भाभी। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची शर्मिंदगी और पछतावा साफ सुनाई दे रहा था।